फरमाया फिर रजाक अल्लाह। यहाँ आप देखिए ये तबुक से वापसी की आयतें शुरू हो गई हैं। अल्लाह अपने नबी की जहन साजी पहले से ही कर देते थे कि अब आप वापस तो जाएंगे, अभी देखिएगा आपके साथ क्या कुछ होना है। फिर रजाक अल्लाह इला ताइफतिन मिनहुम, बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह आपको लौटा कर ले जाए इनके किसी गिरोह के पास। समझ आ रही? उम्मीद तो उनको नहीं थी मुनाफिकों को कि आएंगे, लेकिन इन आयतों से लग ऐसे रहा कि अल्लाह के नबी अगर आगे तो आगे। तबूक के मुकाम पर कहते हैं आयतें नाजिल हुई थी, और सूरत के इस दूसरे हिस्से के पहले चार रुकू यानी 6 से 9 तक के बारे में तो यकीनी बात है कि तबूक से रवानगी से पहले की नाजिल हुई, और अब बाकी आयतें मुख्तलिफ मौके की, कुछ जाते हुए, कुछ रस्तों में, कुछ तबूक के क्याम पे। तो ये आयत वहाँ क्याम के दौरान की नाजिल हुई लगती है कि अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं नबी अगर आप अगर अल्लाह के हुक्म से वापस पहुँच गए तो अब क्या करना है। आप देखिए अगली पॉलिसी, अगर ये ताइफा, ये ताइफा छोटा सा गिरोह होता है यानी ये जो चंद लोग रह गए हैं ना पीछे, फस्ताजनू का लिल खुरूज, फिर अगर वो आपसे इजाज़त मांगे आपके साथ निकलने के लिए यानी किसी और मुहिम पर, किसी और दुश्मन के खिलाफ जिहाद में शिरकत करने की, तो क्या कहना? जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर, कोई ज़रूर नहीं। कुल्लन तखरुजू माइया बदा, साफ कह दीजिए अब तुम मेरे साथ कभी नहीं निकलोगे। ग़ज़वे तबूक की मुहिम में तुम्हारा आखिरी इम्तिहान हो चुका है और तुम उसमें फेल हो चुके हो, तुम्हें अब कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता। ये मतलब है वलन तो कातिलू माया दुआ, और अब तुम मेरे साथ होकर कभी किसी दुश्मन के साथ जंग नहीं करोगे। बैठो अब तुम्हारा नसीब खोटा। वजह इन्नकुम रदी तुम बिल्कुल उदी अव्वल मर्रा, तुम पहली मरतबा राजी हो गए थे बैठ रहने पर। पिछली बातें याद दिलाई जा रही हैं जी, क्योंकि ये भूलने वाली बातें ही नहीं है कि इस्लाम की कीमत पे इन्होंने दुनियावी नफ़े नुकसान पाए, इस्लाम को तन्हा छोड़ दिया। इस्लाम का हाल नहीं इनको दिखता, इस्लाम की मुफलिस इनको नहीं दिखती, इस्लाम का ज़रूरतमंद होना और मुहताज होना इनको नहीं दिखता, इस्लाम के सर पे लटकती नंगी तलवार इनको नहीं दिखी। और रदी तुम बिलकूद, फिर बैठना अच्छा लगा। यहाँ ये भी नहीं है कि बैठ के कर क्या रहे हैं, या आज के सबक में आप देख रहे हैं बैठने की बातें हो रही हैं, सिर्फ सुस्ती। मत सोचिए कि आप दीन के लिए नहीं निकलते तो आप कुछ और भी कर रहे होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ बैठे होते हैं घंटा घंटा चाय का कप लेकर और इधर उधर ट्विटर्स और वेबसाइट्स को घुमाते हुए देख रहे होते हैं। कि जब जिहाद के लिए काम ऐलान हो गया, निकलना फ़र्ज़ हुआ, तो आप घर पे बैठे रहे। लिहाजा बैठिए, आपको जिस बात का शौक़ है ना अल्लाह आपके शौक़ पूरे करता है। फ़क़ुदू मअल ख़ालिफ़ीन, तो अब हमेशा के लिए बैठ रहो पीछे रहने वालों के साथ। इससे क्या पता चलता है? नेकी का एक वक्त होता है, एक मौका होता है, जब बंदा उस नेकी के मौके पे पीछे हो जाए फिर दोबारा उसको आजमाने को दिल नहीं करता। एक कहावत है हमारे कल्चर की कि आजमाए हुए को दोबारा मत आजमाओ, और इसकी एक हदीस भी है, ला यल्दुगु मोमिन मिन हिजरिन वाहिद, मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। जब एक दफ़ा एक काम कर जु लिया और उसका नतीजा दिखा जु दिया, तो अब इसके बाद फिर क्या दोबारा आजमाना? यही बात है। अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात आपके सामने तबूक के उस सफ़र के नाते से जो रखूँ, वो यही बात है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के लिए निकलने का हुक्म दिया, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ नहीं थी कि अब निकलना चाहिए कि नहीं? शदीद गर्मी, पकी हुई फसलें, कहत साली, खजूरें बिल्कुल पक्के तैयार हैं, अगर उतारेंगे नहीं तो हो सकता उसमें कीड़े ही पड़ जाए, ऐसे ही है ना। और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपने खुल के कह दिया कि हर एक को निकलना है, निकल जाना चाहिए था। नेक सहाबा और वो लोग जिनका दिल नबी के ऊपर जमा हुआ था, वो कहते थे अल्लाह के नबी हमें गलत बात का हुक्म दे ही नहीं सकते, लेकिन जो दिल में खोट और रोग लेके बैठे थे ना, उनका जिक्र सबक के शुरू में गुजरा। अभी क्या ज़रूरत थी, और इतनी गर्मी, और फिर थोड़ा सा इंतज़ार ही कर रहे, चलो पाली काट लें। कोई देखिए हिरकल सामने आ तो नहीं गया था पीछे? आपको शुरू में सूरत के आगाज़ में भी और जो आयतें थी कि साकल तो मिलल अर्दी, उन आयतों में भी सुनाया था कि हिरकल की तरफ से सिर्फ धमकियां मिली थी और ख़बरें फैल रही थी कि वो फौज जमा कर रहा है। और यहाँ आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि हिरकल कौन है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद दूसरे बादशाहों की तरह खतूत भेजे और हिरकल ने आपका खत देखा, पढ़ा और उसको आंखों से लगाया था, यूँ चूमा था, और उसने आपको नबी समझ लिया था, लेकिन अपनी बादशाहत के डर से मुसलमान नहीं हुआ। उसको पूरा यकीन था कि सहाबे कराम तो सहाबे कराम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वो सोच भी नहीं सकता था कि वो एक लश्कर लेकर आ जाएंगे। इतनी हैबत तारी हुई उसके ऊपर इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, और अरब की शदीद गर्मी उसमें ये निकल के आ गए। उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था ये सारा कुछ, और अल्लाह के नबी लश्कर लेकर आना तो छोड़िए, खुद साथ तैयार हो गए। क्या अल्लाह के नबी के ऊपर लोगों ने उसका एतराज़ किया, सवाल उठाए? और सबसे मज़े की बात देखिए, मक्का तो फतह पहले ही हो चुका था, सन 8 हिजरी में भी मक्का फतह हुआ, अभी अगला साल है। हम जैसे मुंह जोर और मुंह फट होते, कहते क्या जरूर, सारी कुर्बानी हमसे लेनी है जी, आपने कर जो लिया मक्का फतह, अब किसी और को भी जाके मौका दें हमारी जान छोड़े, ये बात। और क्या अब ज़रूरी है हर काम हम ही करें? 30,000 का लश्कर जमा हुआ था नबी सल्लम के साथ, 30,000 लोग उस दौर में नबी सल्लम के साथ एक अनदेखे रास्ते पे चल पड़े, और यकीन था कि मिलना कुछ नहीं, इसलिए मुनाफिकों को मुश्किल लग रहा था। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि चूँकि तबूक के सफ़र में तो कुछ मिलने की उम्मीदें ही नहीं है, तो ये नहीं निकले, लेकिन देखिएगा ज़रा इसके बाद जो ज़रा और आगे जंगें होंगी जिसमें बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है, तो अगले मौक़ों पर ही आने की उम्मीद रखेंगे। इससे क्या पता चलता है कि जो मुश्किल वक्त में आपका साथ ना दे उसको बाद में याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो सच्चा नहीं है। देखिए ना, आपका बच्चा गिर रहा हो तो आप नहीं उठाएंगे, आप ये कहेंगे अच्छा अभी फ़र्ज़ है कि सुन्नत है कि नफिल है। आपका अगर बच्चा है तो फिर आप नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात देखिए कि ये जो दीन का सफ़र है ना, ये तबूक है। नबी सल्लम के साथ जो साथी थे ना, उनकी तो ये थी सिर्फ 9 साल की कहानी, मदीना में आने के बाद, पिछलों की हम बात नहीं करते। दीन के काम में सबसे मुश्किल फैक्टर ये है कि ये कंटिन्यूस काम है, कंटिन्यूस काम है, मुस्तकिल, इसमें ज़्यादा नहीं लगता कुछ। जैसे मैंने बच्चियों को देखा है, वो कोर्स ये करती हैं तो कहती हैं ये तो बड़ा आसान है, स्कूल में तो बहुत होमवर्क मिलता है, वहाँ तो हमें बहुत घंटे बैठना पड़ता है, यानी ये मुश्किल नहीं है। और ये जिसको कहना चाहिए कि आप जैसे इस वक्त आप बैठे हैं, मैं बोल रही हूँ आप लिख रहे हैं, ख़त्म ना, आपको 2 जमा 2 चाहिए, ना इंग्लिश चाहिए, ना फ्रेंच चाहिए, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा आप लिख रहे हैं। आम कम पढ़ा लिखा हुआ बंदा भी कुरान बड़े आराम से सीखता है, ना तो इसमें ज़ोर लगता है कि कोई हमें इसमें वज़न उठाना पड़ रहा है। मुश्किल क्या है कि ये लॉन्ग टर्म काम है। देखिए दो गेम्स होती हैं, एक होती है मैराथन, लंबी कई मील लंबी दौड़ होती है, और एक होती है कि बस इधर से थोड़ी सी है लेकिन उसमें भागना बहुत तेज़ होता है। दीन का काम मैराथन है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कर जो लिया था अब और क्यों करूं, मैं तो अपना हिस्सा डाल चुकी हूं अब और क्यों डालूं। मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही समझती हूं कि जैसे आपका बच्चा है तो अब आप अपने बच्चे को पहले दिन से लेके आज 9 साल का होने पे भी तो देख ही रहे हैं ना। कभी एक दिन भी आपने सोचा अब कल भी नाश्ता कराया था आज भी कराऊं, अब पढ़ा दिया अब इसको मैं कॉलेज भी लेके जाऊं, नहीं करते ना। आपका बच्चा है, मेहमान घर में आ जाए तो क्या आप कहेंगे एक मैंने कर दिए काम अब दूसरा कोई और कर दे, भाई नहीं आपका मेहमान है। जब तक दीन को आप अपना बच्चा या फिर अपना गेस्ट नहीं बना लेते, आप इसके साथ चल नहीं सकते। किसी दूसरे की खातिर कुछ करना, किसी के बच्चे को प्यार करना, किसी के गेस्ट को कोई इज्जत देना, ये थोड़ी सी बात होती है। मुस्तकिल आपके कंधों पे एक बंदे का बोझ हो, वो डिफरेंट चीज़ है। ये है वो फैक्टर जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस पटरी से उतर जाते हैं, और ये अल्लाह को मतलूब है। और अल्लाह कहता है पिछली की ज़ाया कर दूंगा अगर अब ना की। लेकिन अगर मिसाल है सहाबा कराम, अल्लाह ना करे, तबूक से साफ कोरा चिट्टा इनकार कर देते तो क्या होता? तह बता मालको, तुम्हारे पिछले भी ज़ाया। कैसे? मसलन 5 नमाजों की बजाय अब 4 पढ़ी, 5वीं ना पढ़े तो 4 भी ज़ाया, 3 पढ़ी तो 2 नहीं पढ़ी तो भी ज़ाया। जैसे आप देखिए हर चीज़ का एक ख़ास क्राइटेरियन होता है ना, खाना पकाया आपने, निहारी बना दी, 1 घंटा पकनी थी, सब चढ़ा दिया, उसके बाद आपने आटा डाला और चूल्हा बंद कर दिया, तो खाएंगे कच्चा आटा होगा ना। ये जो लाइट है आप कितने वोल्ट है, 220 वोल्ट पे आएगा तो चलेगा ना, 200 तक भी इसको वोल्टेज दे दें, अगले 20 छोड़ दें तो चलेगा। बस इसको समझिए, दीन के काम का एक क्राइटेरियन है। जब तक आप और मैं उस मतलूबा मेयार पे पूरे नहीं उतरते, पिछला किया भी जाया हो जाता है। बंदा ब्रेक ले ले, रुक जाए, खड़ा हो जाए, लेकिन कभी पलटे ना। जिसने पलट कर अपने आप को उस लाइन से निकाल दिया, एग्जिट लाइन ले ली, वो दोबारा वापस आएगा तो डे वन से शुरू करेगा। ये याद रखिए। हो सकता है वो जल्दी जल्दी कर ले क्योंकि वो पहले कर चुका है, लेकिन इस रास्ते से निकलने वाले खतरे में जो कर रहे कुछ नहीं कर रहे ना, वो भी सिक्योर है। दूसरा कर लेगा उनकी जगह, लेकिन उनकी गाड़ी अंदर खड़ी है, दूसरों के धक्कों से आगे चलती जाएगी। तो दुआ कीजिए कभी बिमक़दिहिम पे हम फरेहल वाले ना हो, खुशियाँ ना मनाएं, शुक्र है मेरी ड्यूटी नहीं लगी, शुक्र इस दफा मेरी जान छूट गई, मेरा नाम ही नहीं लिस्ट में, मैं तो आती ही नहीं, जान छूट गई। ये काम करने में जो खुश होगा ना, ये निफाक का रास्ता खुल जाएगा। फिर आप देखिए कि नबी सल्लम की जान कितनी थी। नबी की जान थी ना, नबी का जिस्म था, उनके पांव थे, पसीना आता था, भूख लगती थी। या तो ये ना कि आप एयर कंडीशन कोच में जा रहे थे और बाकियों को आप पैदल चला रहे थे। 18 लोगों के हिस्से में एक ऊंट, और सफर दूर का और गर्मी। चलिए हम भी लॉन्ग रूट पे खुशी से जाएं, लेकिन क्या खाते पीते चरते चुगते मूड अच्छे रहते हैं? अब क्या खाएंगे? अब रुक ना जाएं, स्टॉप ना ले लें, तो लंबे सफ़र भी अच्छे हैं क्योंकि गाड़ी भी कंफर्टेबल है। उनके पास तो अल्लाह के बंदों के पास एक खजूर और उसकी गुठली चूस चूस के जब तक ख़त्म ना हो जाती उसको छोड़ते ही ना। और जब वो भी ख़त्म हो गई, और जब ऊँट एक एक करके ज़िबा हो गए, क्योंकि ऊँटों के पेट में पानी ही होता है, वो पीते थे, मजबूरी थी, क्या करें, मर जाएंगे। ऐसा बोरिंग सफ़र कौन कर सकता है मुझे बताइए, जो अल्लाह के दीन को अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो हमेशा फ़न नहीं मिलता, हमेशा आपको इज्जत नहीं मिलेगी, हमेशा आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, हमेशा आपको कुर्सी मेज़ नहीं मिलेगा, हमेशा आपको आते ही चाय नहीं पूछी जाएगी, सल्यूटेड बूटेड नहीं होंगे। दीन के काम में कभी बंदे को मट्टी में रुल के मट्टी भी बनना पड़ता है। बट आपकी ये खुश नसीबी है कि अल्लाह ने आपको इस गर्मी में डालकर जहन्नम की गर्मी से बचा लिया। आपका ये पसीना इस रास्ते में बहाकर अल्लाह ने पता नहीं कितनी और बीमारियों में आपको डालने से बचा लिया। एक तो पीछे रहना होता है ना, नफ्सियाती तौर पर भी देखिए कि बंदा गिल्ड में होता है, हाय सारे चले गए मैं नहीं गई, सारे शादी में जाएं आप ना जाएं तो क्या। किसी ने मुझे कहा ये स्नैपचैट जो ना ये लड़ाइयाँ डलवाता है, मैंने कहा वो होता क्या और कैसे? कहते कोई अपना किसी दावत में बैठा स्नैपचैट भेज देता है तो हमें पता चल जाता है वो फलां दोस्त के घर दावत ही, हमें नहीं बुलाया। आप देख रहे हैं, यानी ये भी एहसास बड़ा बुरा लगता है कि सबको बुलाया तो मुझे क्यों नहीं बुलाया। सच्ची बात है, हर एक को होता है। आप खानदानों में देखें सबसे लड़ाई झगड़े शायद शादियों में इस मौके पर होती हैं कि मेरे फलां को क्यों नहीं बुलाया, तो उसको क्यों नहीं बुलाया। तो नेकी से पीछे रहने वाला एक तो पहले साइकोलॉजिकली डाउन होता है, ऊपर से जब अल्लाह उनकी हालत को खोल दे, अंदर की बातें खोल दे, और सारी दुनिया इस कुरान को पढ़ के आज उनकी हालत को पढ़े, तो क्या ये मुनाफिक की खुशी की बात है? क्या ये उसकी इज्जत अफजाई है? करने वालों को कोई बुरा नहीं कहता, रहने वालों को पीछे लोग बुरा कहते हैं। तो क्यों पीछे रहे थे? नंबर एक, आराम तलबी, आराम तलबी। दूसरी बात क्या है? सुस्ती। तीसरी बात है अभी तक पूरी तरह से आमादा ही नहीं थे। और चौथी बात है दुनिया परस्ती। और पांचवी वजह गर्मी। ये गर्मी सर्दी भी मौसम की बड़ी हमारी तवज्जो ले लेती हैं, कभी गर्मी बड़ी तो कभी सर्दी बड़ी। असल बात है करी हुई जाहिदो, अल्लाह के रास्ते की मेहनत मुश्किल लगती थी इसलिए ये पसंद नहीं है। और ये जो जहन्नम की आग की गर्मी है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी ये आग जिसको इब्ने आदम जलाता है, यानी गर्मी का हिस्सा जहन्नम की गर्मी के 70 हिस्सों में से एक है। साहबा ने अर्ज़ किया क्या यही दुनिया की आग काफ़ी ना थी, यानी अल्लाह सिर्फ इतनी कोई आग जहन्नम में डाल दे? तो आपने फरमाया इससे 69 69 हिस्से जहन्नम की आग ज़्यादा है और हर हिस्से में इतनी ही गर्मी है। ये मुस्लिम की रिवायत है 7165। हज़रत समूरा कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के नबी से सुना दोस्तियों में से कुछ को आग इनके टखनों तक पकड़ेगी, ये टखने जो पाँव के साथ हैं, और इनमें से कुछ को इनके घुटनों तक और कुछ को इनकी कमर तक और कुछ को इनकी गर्दन यहाँ तक पकड़ेगी, मुस्लिम की रिवायत है। इतनी गर्म है वो आग। आज तो लोगों ने लतीफ़े बना दिए, सर्दी लगेगी जन्नत में तो थोड़ी देर, जहन्नुम में चल जाएंगे आग सेंकने और क्या और कुछ। तो यहाँ असल में अल्लाह ताला मुनाफिक के शऊर को बेदार कर रहे हैं कि दुनिया में ठंडी छांव मिल जाएगी, आखिरत की गर्मी का क्या करोगे, हमेशा की आग में रहोगे। आज थोड़ी सी मुश्किल सह लो, बाद में फिर मुश्किलात तो निकलेंगी। और ये जो फल यदहकु कलीलन बल यबकु कसीर है ना, आज का लाइफ स्टाइल इस आयत से बिल्कुल अपोजिट है। क्या कहते हैं, लिव एंड लेट टू लिव, जी और जीने दो, मौज करो, मस्ती करो, 4 दिन की दुनिया। अल्लाह कहते हैं कलील दुनिया से फ़ायदा उठाना है, बाद में रोना है, क्या ये अक्लमंदी है। अबू रज़ीन कहते हैं दुनिया बहुत कम है, फिर इसमें जितना चाहो हंस लो, जाहिर है कि हंसी की मुद्दत कम निकलेगी। यानी सारी ज़िंदगी भी कोई हंसता रहे तो फिर भी थोड़ी है। जब अल्लाह के पास पहुंचोगे तो बहुत रोओगे और वो रोना कभी ख़त्म नहीं होगा। जामिल बयान की ये रिवायत है। रबी बिन हैशम कहते हैं कि तुम दुनिया में जितना भी हंस लो थोड़ा है, चाहिए कि रोएं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आखिरत में रोना बहुत होगा। अबू मालिक अल अशरी कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया की मिठास आखिरत की कड़वाहट है और दुनिया की कड़वाहट आखिरत की मिठास है। जामिद सगीर है ये रिवायत। और इब्ने अब्बास ने फल यदहकु कलीलन की तफसीर में फरमाया, दुनिया कलील है, वो यहाँ जितना चाहे हंस ले, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह के पास पहुँचेंगे तो ऐसा रोना होगा जो हमेशा का होगा। तो जज़ाम बीमा कानू यक्सिबून, इस पे सोचें। और ये जो बात नबी सल्लम को कह दी कि अब इनको अगली दफ़ा ना निकलने देना, तो ये एक दिन के फैसले से नहीं हुई, ये इनकी बार बार की उम्मीदें दिलाना और उस काम को ना करना है कि उस नाम को सुनकर कोई कह दे कि इनको कोई काम ना दे, क्योंकि ये पूरा नहीं करेंगे। जब ये वक्त आ जाता है तो ये उस वक्त की बातें, हर एक के लिए बातें नहीं होती, हर हाल में भी ये बातें नहीं होती। और ये जो बात कही जा रही है कि ये वापस दोबारा आपके साथ जाना चाहेंगे गनीमतों की तरफ, तो ये बात सूरह फतह आयत 15 में भी आएगी कि इज़न तलक तो मिला मगानिमा, जब तुम माले गनीमत लेने जाओगे तो ये सारे पीछे रहने वाले भागेंगे, उस वक्त उनको कह देना कि पीछे रहो। खुलासा क्या है, पहली बात है अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद में आराम पसंद लोग, और जो लोग अपनी ज़ात के मुताबिक घूमते हैं ना, उनको पीछे क्यों छोड़ दिया जाता है या वो रह जाते हैं, क्योंकि इस्लाम को सलीमुल फितरत, मजबूत और पुख्ता इरादे के लोग चाहिए होते हैं, जो दुश्मन के सामने सीने खोल के खड़े हों, तवील मुशक्कत बर्दाश्त कर सकें। जबकि ऐश परस्त लोग मुश्किल बर्दाश्त ही नहीं करते, उनके तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा, उनकी तो कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। जो आराम तलब है वो वाकई बड़ा रिस्की है, वो चला भी जाएगा तो साथ उसके एम्बुलेंस जाएगी, साथ उसके कोई कह लीजिए फर्स्ट एड बॉक्स जाएगा। तो इसलिए अल्लाह कहता है ये आराम तलब लोग ज़रा घर में रहें, मुश्किल औकात में कमज़ोर इरादों के लोग इंतशार भी फैलाते हैं। फिर एक जुमला बोलेगा दूसरा उस पर क्या मैं भी वो भी, तो वो जाके एक और बदगोइयों की महफिल कायम करेंगे। तो अल्लाह कहते हैं आप घर में ही इनको कहिए कि बैठें।